नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं।
जी।
पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है उपासना के दो चरण, जप व ध्यान।
हाँ, बहुत ही गहन पुस्तक है ये।
बिल्कुल, ये पुस्तक सिर्फ मतलब कर्मकांड से आगे जाती है ना? यह मन और भावना के स्तर की साधनाओं पर बात करती है, जप और ध्यान।
सही कहा, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम समझें कि ये जप और ध्यान आखिर हैं क्या, इनका महत्व क्या है, पूज्य गुरुदेव ने इनकी विधि कैसे बताई है, और इसके पीछे का कह सकते हैं मनोविज्ञान और जो तथाकथित वैज्ञानिक आधार है वो क्या है।
हाँ, क्योंकि ये आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं, स्थूल पूजा से सूक्ष्म की तरफ ले जाने वाले।
बिल्कुल, तो कहाँ से शुरू करें, जप से?
हाँ, जब से ही शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव एक बड़ा दिल को छूने वाला उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली अपने खोए बच्चों को पुकारती है, या जैसे गज ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को टेरा था। क्या जब भी कुछ ऐसा ही है, आत्मा की परमात्मा के लिए एक पुकार?
वो भाव तो है ही, वो आतुरता, वो पुकार का भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं कि जप केवल मतलब इमोशनल अपील या कोई चापलूसी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो साफ कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ नाम सुनने से खुश नहीं होते, वो देखते हैं अनुशासन, कर्तव्य पालन। तो जप का जो असली गहरा उद्देश्य है वो है मन की शुद्धि।
मन की शुद्धि?
हाँ, जैसे हम रोज नहाकर शरीर साफ करते हैं, वैसे ही समझिए कि जब रोजाना मन पर जो मैल जमती है ना, गलत आदतों की, बुरे संस्कारों की, उसको धोता है। ये एक तरह की मेंटल हाइजीन है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मानसिक स्वच्छता। पूज्य गुरुदेव ने इसे मनोविज्ञान से भी जोड़ा है जहां तक मुझे याद है। जैसे रटंत विद्या होती है, बार बार दोहराने से चीज याद हो जाती है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये पुस्तक की एक खास बात है मनोविज्ञान से जुड़ाव, कि दोहराव मतलब रेपिटेशन मन को ट्रेन करता है। जैसे रस्सी भी अगर लगातार एक ही जगह घिसे ना,
तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है।
हाँ बिल्कुल, वैसे ही लगातार जप करने से मन पर ईश्वरीय चेतना के, अच्छे भावों के गहरे संस्कार पड़ते हैं। ये एक तरह से मन को रीप्रोग्राम करने जैसा है।
और इसका कोई वैज्ञानिक पहलू भी बताया पूज्य गुरुदेव ने, ध्वनि विज्ञान या सूक्ष्म शरीर पर असर, ऐसा कुछ?
हाँ बताया है, वो कहते हैं कि ये जो मंत्र है ना, ये यूं ही नहीं चुन लिए गए, इनके पीछे ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत काम करते हैं।
ध्वनि विज्ञान कैसे?
उनका मानना है कि जप से जो ध्वनि कंपन मतलब वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊर्जा केंद्रों जिन्हें चक्र कहते हैं, और ग्रंथियों मतलब जहाँ ऊर्जा रुक जाती है या गांठे पड़ जाती है, उन पर असर डालती है।
अच्छा।
जैसे आपने देखा होगा सैनिक जब कदम ताल करते हैं तो पुल हिल सकता है ना, या लगातार छोटी छोटी चोट से भी भारी चीज कांपने लगती है, वैसे ही मंत्र ध्वनि की तरंगे हमारे सूक्ष्म शरीर में हलचल पैदा करके सोई हुई शक्तियों को, आत्मबल को जगा सकती हैं, और इसीलिए गायत्री मंत्र को वो इतना श्रेष्ठ बताते हैं।
समझ गया। तो जब से मन शुद्ध हुआ, तैयार हुआ, और फिर इस तैयार जमीन पर ध्यान का बीज बोया जाता है, ऐसा कह सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, ये एक क्रम है।
तो ध्यान के बारे में पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? वो मेले में खोए बच्चे वाली बात मुझे बहुत असरदार लगी थी।
हाँ, वो उपमा ध्यान के मर्म को समझा देती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम अपना असली रूप आत्मा, उसे तो भूल ही गए, और ये शरीर, ये दुनिया, इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा मेले की भीड़ में खो जाए और अपना घर, अपना नाम पता सब भूल जाए। तो ध्यान क्या है? ध्यान उसी भूली हुई याद को वापस लाने की कोशिश है, अपने आप में वापस लौटने का, अपने केंद्र को खोजने का एक सचेत प्रयास।
लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना तो नहीं है ना? कई लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है, मन भटकता रहता है।
सही बात है, और यही पूज्य गुरुदेव बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। ध्यान का असली लक्ष्य तो है चित्त की वृत्तियों को काबू करना, मतलब मन जो यहाँ वहाँ भागता है, विचार जो भटकते हैं, उनको रोकना, एक दिशा देना।
हाँ, वो तो सबसे मुश्किल काम लगता है।
है, बिल्कुल है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकदम से पूर्ण एकाग्रता, जिसे समाधि कहते हैं, वो पाना शुरू में बहुत कठिन है, तो वो जोर देते हैं तन्मयता पर।
तन्मयता?
हाँ, तन्मयता मतलब जिस भी इष्ट का, जिस भी विचार का आप ध्यान कर रहे हैं, उसमें बस डूब जाइए, खो जाइए, भले ही पूरी एकाग्रता ना हो, पर मन उसी एक दिशा में लगा रहे, ये पहला कदम है।
अच्छा, पुस्तक में साकार और निराकार ध्यान की भी बात है और सविता देवता यानी सूर्य के प्रकाश का ध्यान, इसे काफी महत्व दिया गया है।
जी, साकार ध्यान होता है किसी रूप पर मन टिकाना, जैसे कोई मूर्ति। निराकार होता है बिना रूप के तत्व पर, जैसे प्रकाश। पूज्य गुरुदेव उगते सूर्य के सुनहरे प्रकाश, जिसे सविता कहते हैं, उसे एक बहुत अच्छा आलंबन मतलब सहारा मानते हैं ध्यान के लिए।
क्यों, उसकी क्या खासियत है?
क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेजस्वी है, जीवन देने वाला है, और ये एक तरह से रूप और अरूप के बीच पुल का काम कर सकता है। ये साधक को बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर अंदर के प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करता है। असल लक्ष्य क्या है? भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाए, एक हो जाए, समर्पण का भाव, अभेद का भाव जागे।
और ये जो ईश्वर दर्शन या अनुभूति की बात होती है, उसका असली मतलब क्या है? क्या कोई चमत्कार दिखेगा, कोई खास आकृति दिखेगी? पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं इस पर?
ये भी एक बहुत जरूरी बात है जो पुस्तक साफ करती है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार असली ईश्वर अनुभूति का सबूत कोई बाहरी चमत्कार या अलौकिक दृश्य नहीं है।
तो फिर क्या है
सबूत? है साधक के अपने जीवन में बदलाव, उसके अंदर अच्छे गुणों का बढ़ना, विचारों में अच्छाई आना, व्यवहार में नम्रता, शालीनता आना, और जो जीवन के ऊंचे आदर्श है उनके प्रति निष्ठा का गहला हो जाना। जब किसी के गुण, कर्म, स्वभाव में दिव्यता दिखने लगे, समझे वही सच्ची ईश्वर प्राप्ति है।
ये तो बहुत ही व्यवहारिक रुचि बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जब मन को साफ और स्थिर करता है,
हाँ, एक आधार तैयार करता है,
और ध्यान उस स्थिर मन को एकाग्र करके आत्मा की ओर, अपने असली स्वरूप की ओर मोड़ता है, तो ये सिर्फ पूजा पाठ की क्रियाएं नहीं है, बल्कि आत्म सुधार के, आत्म विकास के शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा जगाने वाले अभ्यास हैं।
बिल्कुल सही समझा आपने। ये पद्धतियां हमें बाहरी कर्म कांडों की सत्ता से उठाकर अपने अंदर गहरे उतरने का रास्ता दिखाती हैं, अपनी भूली हुई दिव्यता को फिर से पहचानने और जगाने का मार्ग खोलती हैं।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर ये साधनाएं, जप और ध्यान हमारे मन को इतना अनुशासित, इतना केंद्रित कर सकती हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने मन के भटकाव को रोकने के लिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए इन सिद्धांतों का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, सोचने और अमल करने वाली बात।